डिप्टी कलेक्टर की कहानी का शेष अंश पेज 121। कैलाश बिहारी ने उनको देखते ही चिंतातुर स्वर में कहा, अरे तुम कहाँ बाहर आ गए, मुझे ही भीतर बुला लेते। सकलदीप बाबू चारपाई पर बैठ गए और छीड़ हंसी हंसते हुए बोले, अरे मुझे कुछ हुआ थोड़े है, सोचा आराम करने की ही आदत डाल लूँ। यह कहकर वह अर्थपूर्ण दृष्टि से अपने मित्र को देखकर मुस्कुराने लगे। सब हालचाल पूछने के बाद कैलाश बिहारी ने प्रश्न किया, नारायण बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं क्या? सकलदीप बाबू ने बनावटी उदासीनता प्रकट करते हुए कहा, हाँ गए होंगे, कहीं लड़के उनको छोड़ते भी तो नहीं, कोई न कोई आकर लिवा जाता है। कैलाश बिहारी ने सराहना की, खूब हुआ साहब, मैं भी जब इस लड़के को देखता था दिल में सोचता था कि यह आगे चलकर कुछ न कुछ जरूर होगा। वह तो साहब देखने से ही पता चल जाता है, चाल में और बोलने चालने के तरीके में कुछ ऐसा ही है। चलिए हम सब इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं। सकलदीप बाबू इधर उधर देखने के बाद सिर को आगे बढ़ाकर सलाह मशवरे की आवाज़ में बोले, अरे भाई साहब कहाँ तक बताऊँ, अपने मुँह से क्या कहना, पर ऐसा सीधा साधा लड़का तो मैंने देखा नहीं। पढ़ने लिखने का तो इतना शौक कि 24 घंटे पढ़ते रहे, मुंह खोल कर किसी से कोई चीज़ भी मांगता नहीं। कैलाश बिहारी ने भी अपने लड़के की तारीफ में कुछ बातें पेश कर दी, लड़के तो मेरे भी सीधे हैं पर मझला लड़का शिवनाथ जितना गऊ है उतना कोई नहीं, ठीक नारायण बाबू की तरह ही है। नारायण तो उस जमाने का कोई ऋषि मुनि मालूम पड़ता है, सकलदीप बाबू ने गंभीरतापूर्वक कहा। बस उसकी एक ही आदत है, मैं उसकी माँ को मेवा देता हूँ और नारायण रात में अपनी माँ को जगाकर खाता है, भली बुरी उसकी बस एक यही आदत है। अरे भैया तुमसे बताता हूँ, लड़कपन में हमने इसका नाम पन्ना लाल रखा था, पर एक दिन एक महात्मा घूमते हुए हमारे घर आए, उन्होंने नारायण का हाथ देखा और बोले, इसका नाम पन्ना सन्ना लाल रखने की जरूरत नहीं है, बस आज से इसे नारायण कहा करो, इसके कर्म में राजा होना लिखा है। पहले जमाने की बात दूसरे थी, लेकिन आज का राजा का अर्थ क्या है, डिप्टी कलेक्टर तो एक अर्थ में राजा ही हुआ। अंत में आंखें मटकाकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की पर हाँफने लगे। दोनों मित्र बहुत देर तक बातचीत करते रहे और अधिकांश समय वे अपने अपने लड़कों का गुणगान करते रहे। पेज 122। घर के लोगों को सकलदीप बाबू की बीमारी से बहुत चिंता थी, बुखार के साथ दस्त भी था, इसलिए वह बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन वह बात को यह कहकर उड़ा देते, अरे कुछ नहीं, एक दो दिन में मैं अच्छा हो जाऊंगा, और एक वैद्य की कोई मामूली सस्ती दवा खाकर 2-3 दिन बाद वह अच्छे भी हो गए, लेकिन उनकी दुर्बलता पूर्ववत थी। जिस दिन डिप्टी कलेक्टर का नतीजा निकला, रविवार का दिन था, सकलदीप बाबू सवेरे रामायण का पाठ तथा नाश्ता करने के बाद मंदिर चले गए। छुट्टी के दिनों में मंदिर पहले से ही चले जाते और वहाँ 2-3 घंटे और कभी कभी तो 4-4 घंटे रह जाते। वह 8 बजे मंदिर पहुँच गए। जिस गाड़ी से नतीजा आने वाला था वह 10 बजे आती थी। सकलदीप बाबू पहले तो बहुत देर तक मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर सुस्ताते रहे, वहाँ से उठकर ऊपर आए तो नंदलाल पंडे ने जो चंदन रगड़ रहा था नारायण के परीक्षा फल के संबंध में पूछताछ की। सकलदीप बाबू वहाँ पर खड़े होकर असाधारण विस्तार के साथ सब कुछ बताने लगे। वहाँ से जब उनको छुट्टी मिली तो धूप काफ़ी चढ़ गई थी, उन्होंने भीतर जाकर भगवान शिव के पिंड के समक्ष अपना माथा टेक दिया। काफ़ी देर तक वह उसी तरह पड़े रहे, फिर उठकर उन्होंने चारों ओर घूम घूम कर मंदिर के घंटे बजाकर मंत्रोच्चारण किए और गाल बजाए। अंत में भगवान के समक्ष पुनः दंडवत कर बाहर निकले ही थे कि जंग बहादुर सिंह मास्टर ने शिव दर्शनार्थ मंदिर में प्रवेश किया और उन्होंने सकलदीप बाबू को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। अरे मुख्तार साहब, घर नहीं गए? डिप्टी कलेक्टर का नतीजा तो निकल गया। सकलदीप बाबू का हृदय धक से कर गया, उनके होंठ कांपने लगे और उन्होंने कठिनता से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा कब आया? जंग बहादुर सिंह ने बताया, अरे 10 बजे की गाड़ी से आया। नारायण बाबू का नाम तो अवश्य है, लेकिन वह कुछ आगे न बोल सके। सकलदीप बाबू का हृदय जोर से धक धक कर रहा था। उन्होंने अपने सूखे होठों को भीतर से तर करते हुए अत्यंत ही धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई खास बात है? कोई खास बात नहीं है, अरे उनका नाम तो है ही, यह है कि जरा नीचे है, 10 लड़के लिए जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका नाम 16वां 17वां पड़ेगा। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, कुछ लड़के तो कलेक्ट्री में चले जाते हैं, कुछ मेडिकल में नहीं आते हैं। और इस तरह पूरी पूरी उम्मीद के लिए नारायण बाबू ले ही लिए जाएंगे। सकलदीप बाबू का चेहरा फक पड़ गया, उनके पैरों में जोर नहीं था और मालूम पड़ता था कि वह गिर जाएंगे। जंग बहादुर सिंह तो मंदिर में चले गए, लेकिन वह कुछ देर तक वहीं खड़े, सिर झुकाकर इस तरह खड़े रहे जैसे कोई भूली बात याद कर रहे हो। फिर वह चौंक पड़े और अचानक उन्होंने तेजी से चलना शुरू किया। उनके मुंह से धीमे स्वर में तेजी से शिव शिव निकल रहा था। पेज 123। 8-10 गज आगे बढ़ने पर उन्होंने चाल और तेजी कर दी, पर शीघ्र ही बेहद थक गए और एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर हाँफने लगे। 4-5 मिनट सुस्ताने के बाद उन्होंने फिर चलना शुरू किया। वह छड़ी को उठाते गिराते, छाती पर सिर गाड़े तथा शिव शिव का जाप करते, हवा के हल्के झोंकों से धीरे धीरे टेढ़े तिरछे उड़ने वाले सूखे पत्तों की भांति डगमग डगमग चले जा रहे थे। कुछ लोगों ने उनको नमस्ते किया तो उन्होंने देखा नहीं, और कुछ लोगों ने उनको देखकर मुस्कुराकर आपस में आलोचना प्रत्यालोचना शुरू कर दी, तब भी उन्होंने कुछ नहीं देखा। लोगों ने संतोष से, सहानुभूति से तथा अफसोस से देखा, पर उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उनको बस एक ही धुन थी कि वह किसी तरह घर पहुंच जाए। घर पहुंचकर वह कमरे में चारपाई पर धम से बैठ गए। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, नारायण की अम्मा। सारे घर में मुर्दनी छाई हुई थी। छोटे से आंगन में गंदा पानी, मिट्टी, बाहर से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते तथा गंदे कागज पड़े थे और नाबदान से दुर्गंध आ रही थी। ओसारे में पड़ी पुरानी बस खट पर बहुत से गंदे कपड़े पड़े थे और रसोई घर से उस वक्त भी धुआं उठ उठकर सारे घर की सांस को घोट रहा था। कहीं कोई खटर पटर नहीं हो रही थी और मालूम होता था कि घर में कोई है ही नहीं। शीघ्र ही जमुना न मालूम किधर से निकली, कमरे में आई और पति को देखते ही उसने घबरा कर पूछा, तबीयत तो ठीक है? सकलदीप बाबू ने झुंझुलाकर उत्तर दिया, मुझे क्या हुआ है जी, पहले यह बताओ नारायण जी कहाँ है? जमुना ने बाहर के कमरे की ओर संकेत करते हुए बताया, उसी में पड़े हैं, न कुछ बोलते हैं और न कुछ सुनते हैं। मैं पास गई तो गुमसुम बने रहे, मैं तो डर गई हूँ। सकलदीप बाबू ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, अरे कुछ नहीं, सब कल्याण होगा, चिंता की कोई बात नहीं। पहले यह तो बताओ, बबुआ को तुमने कभी यह तो नहीं बताया कि उनकी फीस या खाने पीने के लिए मैंने 600 रुपये कर्ज लिए हैं? मैंने तुमको मना कर दिया था कि ऐसा कभी भी सूरत में न करना। जमुना ने कहा, मैं ऐसी बेवकूफ़ थोड़े हूँ। लड़के ने एक दो बार खोद खोद कर पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आते हैं। एक बार तो उसने यहाँ तक कहा कि जफल मेवा और दूध बंद कर दो, बाबूजी बेकार में इतनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। पर मैंने कह दिया कि तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिना किसी चिंता के मेहनत करो, बाबूजी को इधर बहुत मुकदमे मिल रहे हैं। सकलदीप बाबू बच्चे की तरह खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे, बुआ कमरे में ही है ना। पेज 124। जमुना ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। सकलदीप बाबू मुस्कुराते हुए उठे। उनका चेहरा पतला पड़ गया था, आंखें धस गई थी और मुख पर मूछें झाड़ू की भांति फरक रही थी। वह जमुना से यह कहकर कि तुम अपना काम देखो, मैं अभी आया, कदम को दबाते हुए बाहर के कमरे की ओर बढ़े। उनके पैर कांप रहे थे और उनका सारा शरीर कांप रहा था। उनकी सांस गले में अटक अटक जा रही थी। उन्होंने पहले ओसारे में ही सिर बढ़ाकर कमरे में झांका। बाहर वाला दरवाजा और खिड़कियां बंद थी, परिणाम स्वरूप कमरे में अंधेरा था। पहले तो कुछ न दिखाई पड़ा और उनका हृदय धक धक करने लगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़कर गौर से देखा तो चारपाई पर कोई व्यक्ति छाती पर दोनों हाथ बांधे चित पड़ा था। वह नारायण ही था। वह धीरे से चोरों की भांति पैर को दबाकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अस्वाभाविक विश्वास की मुस्कुराहट थिरक रही थी। वह मेज के पास पहुंचकर चुपचाप खड़े हो गए और अंधेरे में ही किताब उलटने पुलटने लगे। लगभग 1.5-2 मिनट तक वहीं उसी तरह खड़े रहने पर वह सराहनीय फुर्ती से घूम कर नीचे बैठ गए और खिसक कर चारपाई के पास चले गए और चारपाई के नीचे झाँक झाँक कर देखने लगे, जैसे कोई चीज़ खोज रहे हो। तत्पश्चात पास में रखी नारायण की चप्पल को उठा लिया और एक दो क्षण उसको उलटने पुलटने के पश्चात उसको धीरे से वहीं रख दिया। अंत में वह सांस रोककर धीरे धीरे इस तरह उठने लगे जैसे कोई चीज़ खोजने आए थे, लेकिन उसमें असफल होकर चुपचाप वापस लौट रहे हों। खड़े होते समय वह अपना सिर नारायण के मुख के निकट ले गए और उन्होंने नारायण को आंखें फाड़ फाड़ कर गौर से देखा। उसकी आंखें बंद थीं, वह चुपचाप पड़ा हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की आहट, किसी प्रकार का शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। सकलदीप बाबू एकदम डर गए और उन्होंने कांपते हृदय से अपना बायां कान नारायण के मुख के बिल्कुल नज़दीक कर दिया और उस समय उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने अपने लड़के की सांस को नियमित रूप से चलते पाया। वह चुपचाप इस तरह आए थे, उसी तरह बाहर निकल गए। पता नहीं कब से जमुना दरवाजे पर खड़ी चिंता के साथ भीतर झांक रही थी। उसने पति का मुंह देखा और घबरा कर पूछा, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। सकलदीप बाबू ने इशारे से उसको बोलने से मना किया और फिर उसको संकेत से बुलाते हुए अपने कमरे में चले गए। जमुना ने कमरे में पहुंचकर पति को चिंतित एवं उत्सुक दृष्टि से देखा। सकलदीप बाबू ने गदगद स्वर में कहा, बबुआ सो रहे हैं। वह आगे कुछ न बोल सके, उनकी आंखें भर आई, वह दूसरी ओर देखने लगे। कहानी समाप्त।